समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. So chirp away listeners, a very good morning to you and my co-anchor Manoj.
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
नमस्कार मनोज। सो वी बिगिन विद सम न्यूज हेडलाइंस नाउ।
जी
यस, इंडिया हैज अचीव द हाईएस्ट एवर ग्रोथ इन इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 सिंस द लॉन्च ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव रीचिंग अ रिकॉर्ड 1,27,000 करोड़ रुपीज। द वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन हैज सर्ज्ड 174% इंक्रीज फ्रॉम 46,429 करोड़ इन 2014-15। अ रिपोर्ट।
65% ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इज नाउ मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिक, a significant shift from the earlier 65-70% import dependency. The defense exports have also surged from 686 crore rupees in 2013-2014 to an all-time high of over 21,000 crore rupees in 2023-24, marking a 30-fold increase over the past decade. This growth has been bolstered by the Make in India initiative, which has enabled the development of advanced military platforms. The defense ministry said, once dependent on foreign suppliers, the country now stands as a rising force in indigenous manufacturing, shaping its military strength through homegrown capabilities. The ministry said the government has introduced several measures to improve ease of doing business in the defense manufacturing sector. India now targets 3 lakh crore rupees in defense production by 2029, reinforcing its position as a global defense manufacturing hub. Adarsh for Akashvani News, Delhi.
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तपेदिक यानी टीबी के 10,000 आइसोलेट्स की जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी होने की घोषणा की है। डॉक्टर सिंह ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इसकी जानकारी दी। इस राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य जीनोमिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके दवा प्रतिरोधी टीबी से निपटना है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 में देश को टीबी मुक्त बनाना है
और हमें इस बात की खुशी भी है और ये हमारे लिए एक चुनौती भी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम पर डाल करके ये तय किया कि हम 2025 के भीतर ही टीबी मुक्त भारत कायम करने में सफल हो पाएंगे।
दिल्ली विधानसभा में आज मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। 27 वर्षों बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी भाजपा सरकार का ये पहला बजट है। बजट से पहले आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि आज पेश होने वाला ये बजट शहर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा।
In Nepal, the foundation stone was laid yesterday for the construction of the Sri Nepal Rashtriya Secondary School multi-purpose building at Dulu Municipality, Dai Lake. A release from the Indian Embassy in Nepal said, Sri Nepal Rashtriya Secondary School multi-purpose building is being built with the Government of India's financial assistance at the project cost of Nepali rupees 39.00 million under Nepal-India government. Nepal India Development Cooperation. The Government of India's grant and the Nepal India Development Cooperation is being utilized for the construction of a 3.5-floor building, which will include a handicraft showcase.
ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट बी एगेडे ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस के नेतृत्व में ट्रंप प्रशासन की सुनियोजित ग्रीनलैंड यात्रा को आक्रामक और दबाव बनाने वाली बताते हुए उसकी कड़ी आलोचना की है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज और ऊर्जा सचिव क्रिस राइट भी इस यात्रा में शामिल थे। ग्रीनलैंड के समाचार पत्र को दिए गए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री एगेडे ने ग्रीनलैंड में अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मौजूदगी पर सवाल उठाया और कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। वहीं दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि मंडल की ग्रीनलैंड यात्रा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसे मित्रतापूर्ण कार्रवाई बताया। इस बीच एगेडे की वामपंथी पार्टी इनुइट अताकाती गीत को ग्रीनलैंड के संसदीय चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि वहां जब तक नया गठबंधन नहीं बन जाता तब तक श्री एगेडे प्रधानमंत्री बने रहेंगे।
In an effort to de-escalate tensions in the ongoing Gaza conflict, Egypt has put forward a new proposal aimed at restoring the ceasefire between Israel and Hamas. The Egyptian plan introduces a phased approach to hostage release and potential withdrawal, suggesting Hamas release 5 Israeli hostages each week. Under the proposed framework, Israel would implement the second phase of the ceasefire after the initial week of hostage releases. Security sources reported that both the United States and Hamas have expressed agreement with the proposal, while Israel has yet to provide a response. Moving on to the world of sports now, the Indian national football team will take on Bangladesh in the crucial third-round match of the AFC Asian Cup 2027 qualifiers at the Jawaharlal Nehru Stadium in Shillong, Meghalaya this evening. The match will begin at 7 p.m. We have a report.
India is placed in Group C of the final round of the AFC Asian Cup 2027 qualifiers alongside Hong Kong, Singapore and Bangladesh. The teams will compete in a home and away round robin format until March 2026 with the group winners advancing to the AFC Asian Cup tournament in Saudi Arabia. The Blue Tigers are coming off a commanding 3-0 victory over the Maldives in a friendly match last Wednesday. In a pre-match press conference, Indian player Sandesh Jhingan said the team is focusing on preparing itself irrespective of who the opponent is.
It's all about how you prepare yourself. And what I've learned is, if you're well prepared, you can fight against any team. And if you're not prepared well, any team can beat you. So it's not about focusing on Bangladesh or, you know, some other country. It's just about, have you prepared yourself in the best way possible?
Next we have from IPL cricket, where Delhi Capitals defeated Lucknow Super Giants by one wicket in a last over thriller at Vishakhapatnam last night. Chasing a target of 210 set by LSG, Delhi Capitals overhauled the total with just three balls remaining. At one stage, Delhi was struggling at 65 for 5, but impact player Ashutosh Sharma along with debutant Vipraj Nigam turned the game in Delhi's favour. Ashutosh further sealed the victory with a 6 and was named player of the match. Today Gujarat Titans will lock horns with Punjab Kings at Ahmedabad from 7:30 p.m. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
अब रुख करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हुआ। 5 दिवसीय बजट सत्र से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा और अन्य के साथ खीर समारोह में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कल सदन में दिल्ली परिवहन आयोग DTC के कामकाज पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश की। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने दिल्ली के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें बिजली की आपूर्ति, दिल्ली के अस्पतालों में उपलब्ध एम्बुलेंस, वेंटिलेटर और ICU वार्ड की उपलब्धता शामिल है। विपक्षी विधायकों ने महिला समृद्धि योजना पर सवाल उठाए और योजना की पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने की भी मांग की, लेकिन अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद सभी विपक्षी नेता सदन से बाहर चले गए। सदन में विपक्ष की नेता और आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी इस योजना पर चर्चा नहीं करना चाहती, जिसका वादा भाजपा ने इस साल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में किया था।
News from Chennai now. The North Chennai Thermal Power Station is finally nearing commercial operation, with Tamil Nadu's Power Generation Corporation floating fresh tenders to complete pending work. The 800-megawatt supercritical plant, inaugurated last year, has faced multiple setbacks, but a renewed trial run is underway and operations are expected to begin in April. To ensure uninterrupted coal supply and ash handling, the state is seeking new bidders to complete the balance of plant package, a critical step in making the facility fully operational. Manoj?
अब महाराष्ट्र की खबर. महाराष्ट्र विधानमंडल ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का अनुरोध किया. प्रोटोकॉल मंत्री जय कुमार रावल ने राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया, जहां इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. इसके बाद प्रस्ताव को विधान परिषद में पेश किया गया, जिसे वहां भी बिना किसी असहमति के स्वीकृति दे दी गई.
Getting to Bengaluru now, the Nano Electronics Roadshow and Conference on Semiconductor Ecosystem in India will be held in Bengaluru on March 27th. This is the initiative of Nanotechnology Division of the Ministry of Electronics and Information Technology in partnership with IISc Bengaluru, IIT Bombay, Madras, Delhi, Kharagpur and Guwahati. The stakeholders from the government, industry, academia, strategic sectors, startups and others from the ecosystem will dwell on various issues. The roadshow will encompass a diverse range of topics, including a quantum technology, neuromorphic computing, opportunities in artificial intelligence, IT and electronics. It will also showcase indigenous advancements in nanoelectronics technology. I have another one from Karnataka, that is Bengaluru News. Karnataka State Lawn Tennis Association will host the SM Krishna Memorial Tennis Tournament in Bengaluru from March 31st to April 6th. The event set to be held at the KSLTA Stadium will offer a prize of $30,000 to the winners. The qualifying rounds for the tournament will be held on March 29 and 30. And the main rounds will begin from March 31 and singles finals on April 6. Entry to the tournament for the public will be free. Manoj?
अब पश्चिम बंगाल कोलकाता की खबर. केंद्र सरकार पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कलाईकुंडा में हवाई अड्डा बनाने की योजना बना रही है. इस संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पश्चिम बंगाल सरकार के संपर्क में है. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सोमवार को राज्यसभा में इसकी जानकारी दी. वे पश्चिम बंगाल भाजपा के राज्यसभा सांसद शमिक भट्टाचार्य के सवाल का जवाब दे रहे थे. राज्य सरकार को इस हवाई अड्डे के लिए 38.25 एकड़ जमीन प्रदान करने की आवश्यकता होगी. केंद्र सरकार इस समय देश के छोटे शहरों में हवाई अड्डा बुनियादी संरचना को बढ़ाने और विकसित करने की कोशिश कर रही है.
Let's move to Hyderabad now. The Telangana State Assembly has passed a resolution adopting the Transplantation of Human Organs and Tissues Act, Central Act 42, 1994 and Rules 1995 and Transplantation of Human Organs and Tissues Amendment Act of 2011, THOTA. State Health Minister C. Damodar Raja Narasimha moved the resolution in the Assembly yesterday. The Act regulates the removal, storage and transplantation of human organs and tissues for therapeutic purposes and prevents commercial dealings. As per the 1995 regulations, only neurosurgeons and neurophysicians could declare a person brain dead. As per the new regulation, a physician, surgeon, intensivist and anesthetist can also declare the same. The Act also enables sourcing organs donated in any other state to be transplanted in Telangana. Manoj?
अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं. पहले दिल्ली के मौसम का हाल. दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान है. यहाँ का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आसमान साफ रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. कोलकाता में भी आज आसमान साफ रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं सुभद्रा से.
Yes, Manoj, starting with Chennai weather news, is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 28 degrees Celsius. Maximum will be around 34 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 20 degrees Celsius. Maximum will be around 33 degrees. Hyderabad is also expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 25 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 25 मार्च है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। आइए नजर डालते हैं।
Yes, you know, at precisely the stroke of noon, the great imperial city of Venice was founded in the malarial swamps off the coast of Italy on this day in 421. And 1584, a patent authorizes the colonization of Virginia is granted to Sir Walter Raleigh on this day. And 1655 this day, Saturn's largest moon Titan is discovered by Christian Huygens. The word Titan meant one that is great in size, importance, or achievement. And 1807, the world's first railway passenger service began in Wales on the Oystermouth Railways, later known as the Swansea and Mumbles Railway.
1668 में आज ही के दिन अमेरिका में पहली बार घोड़दौड़ का आयोजन हुआ था। 1788 में आज ही के दिन समाचार पत्र कलकत्ता गैजेट में भारतीय भाषा बांग्ला का पहला विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। 1807 में आज ही के दिन ब्रिटिश की संसद ने दास व्यापार खत्म कर दिया था। 1883 में विश्व के सबसे आधुनिक समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत सागर केनिया का जलावतरण हुआ था। 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। और 1898 में आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी थी।
1948 this day, meteorologists at Tinker Air Force Base in Oklahoma City, United States, issued the world's first tornado forecast. And 1954 this day, Radio Corporation of America, RCA Company, manufactures its first color TV set and begins mass production. 1957, France, West Germany, Italy, the Netherlands, Belgium and Luxembourg signed the treaty in Rome, establishing the European Economic Community, also known as the Common Market. And friends, March 25 is also the Feast of Annunciation for our Christian brothers and sisters throughout the world. This day reminds all Christians of the time when Virgin Mary was asked by the Lord to bring into the world a Savior who would be named Jesus. In some English-speaking and Scandinavian countries, the Feast of the Annunciation is also known as Lady Day.
और अब याद करते हैं उन विभूतियों को जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्म दिवस है।
मनोज, आई हैव जस्ट फ्यू मोर एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन। दिस हैपेंड इन 1992। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन रिलीजेस इट्स एक्सेल 4.0 स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट मेड पर्सनल कंप्यूटर्स मोर यूजर फ्रेंडली एंड कन्वीनियंट टू होम एंड ऑफिस यूजर्स, अ वर्सटाइल टूल फॉर डे टू डे एक्सिस्टेंस एंड ऑल्सो सेम रिलेटेड टू कंप्यूटर। 1995 दिस डे, कंप्यूटर प्रोग्रामर फ्रॉम इंडियाना, यूनाइटेड स्टेट्स, वार्ड कनिंगहम launched the first WikiWiki Web, a software program that allowed for easy collaborative editing, organization of information. Of course, today we can't live without it. And Manoj, carry on with the history. English author and poet Mary Webb is born this day in 1881, best known for her book Precious Bane. Her lyrical style conveys a rich, intense impression from the Shropshire countryside and its people. Of course, her other works include The Golden Arrow, Gone to Earth, House in Dormer Fast Forest, and Seven for a Secret.
आज पुण्यतिथि है गणेश शंकर विद्यार्थी की। वे एक निडर और निष्पक्ष पत्रकार तो थे ही, इसके साथ ही वे एक समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अपनी बेबाकी और अलग अंदाज से दूसरों के मुंह पर ताला लगाना एक बेहद मुश्किल काम होता है। कलम की ताकत हमेशा से ही तलवार से अधिक रही है और ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्होंने अपने कलम से सत्ता तक की राह बदल दी। गणेश शंकर विद्यार्थी भी ऐसे ही पत्रकार थे जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो कलम और वाणी के साथ साथ महात्मा गांधी के अहिंसक समर्थकों और क्रांतिकारियों को समान रूप से देश की आजादी में सक्रिय सहयोग प्रदान करते रहे। गणेश शंकर विद्यार्थी ने मात्र 16 वर्ष की अल्पायु में हमारी आत्मोत्सर्गता नामक एक किताब लिख डाली थी। वर्ष 1911 में भारत के चर्चित समाचार पत्र सरस्वती में उनका पहला लेख आत्मोत्सर्ग शीर्षक से प्रकाशित हुआ। अपने सहयोगियों एवं वरिष्ठ जनों से सहयोग मार्गदर्शन का आश्वासन पाकर अंततः विद्यार्थी जी ने 9 नवंबर 1913 से प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया।
A touching birth anniversary tribute to a brave soldier, a visionary leader from Karnataka, Vasant Venugopal, the commanding officer of the 9th Battalion, Maratha Light Infantry. On 31st July 2007, he was killed in action while preventing heavily armed infiltrators from crossing the India-Pakistan border at Uri, Jammu and Kashmir. Vasant Venugopal was posthumously awarded the Ashok Chakra, India's highest military decoration for peacetime gallantry. He was only 40 years old when he died. His biography, Forever 40, was written by his wife Subhashini Vasant and Veena Prasad was released in the year 2011.
आज पुण्यतिथि है निम्मी की। वे हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। उनका असली नाम नवाब बानू था। बॉलीवुड की इस अभिनेत्री का राज कपूर ने फिल्मी दुनिया से परिचय करवाया था। हालांकि निम्मी की फिल्म शुरुआत सहायक अभिनेत्री के तौर पर राज कपूर और नरगिस अभिनीत फिल्म बरसात से हुई थी। दिलचस्प बात यह भी है कि इस खूबसूरत अभिनेत्री पर राज कपूर की नज़र उस समय पड़ी जब वे एक फिल्म की शूटिंग देख रही थी। निर्देशक के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड उनकी आखिरी फिल्म थी। उनकी मुख्य फिल्में बरसात, सजा, दाग, अमर, बसंत बहार, पूजा के फूल, हमदर्द, उड़न खटोला, सोहनी महिवाल, दाल में काला आदि हैं।
Friends, birthday of Sir Helton Achilles John, original name Reginald Kenneth Dwight. But we know him as Elton John, good old pianist, superstar, a brilliant songwriter, singer, who has had hits in the charts since 1970 with his first hit, Your Song. Over the next 40 years, he's had a large number of hits. In 1992, the awards he has gained during these years is also a testament to his music and include Academy Award, Golden Globe, Tony Award, multiple Grammys. From humble beginnings as a pub pianist in England to one of the most musical superstars of the modern era shows not only his talent but his commitment to his art. Elton turned 78 today. Happy birthday, Elton John.
Blue jean baby, LA lady, seamstress for the band.
March 25, Aretha Franklin, American singer, the Queen of Soul, was born in Memphis, Tennessee. Franklin went on to release several popular singles, many of which are now considered classics. In 1987, she became the first lady artist to be inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. In 2008, she won her 18th Grammy Award, making her one of the most honored artists in Grammy history. Sadly, Aretha battled pancreatic cancer, passed away in the year 2019.
Yes, I did. I still believe the valley was.
आज पुण्यतिथि है भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री नंदा की। उनका जन्म 8 जनवरी 1938 को हुआ था। उन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों में विशेष रूप से कार्य किया। अपने समय की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में नंदा का नाम भी लिया जाता है। 60 और 70 के दशक की इस अदाकारा ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी। बाद में वे सफल नायिका बनी और फिर चरित्र अभिनेत्री। अपने संवेदनशील अभिनय से उन्होंने कई फिल्मों में अपनी भूमिकाओं को बखूबी जीवंत किया। आपको सर्वश्रेष्ठ सहनायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म आंचल के लिए दिया गया था। आपकी मुख्य फिल्में हैं तूफान और दिया, तीन देवियां, गुमनाम, नींद हमारी खाब तुम्हारे, धरती कहे पुकार के, धूल का फूल, जब जब फूल खिले, छोटी बहन आदि। आज जयंती है फारूक शेख की। वे एक भारतीय अभिनेता, समाज सेवी और एक टेलीविजन प्रस्तुता थे। उन्हें 70 और 80 के दशक की फिल्मों में अभिनय के कारण प्रसिद्धि मिली। वे सामान्यतः कला सिनेमा में अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, जिसे समानांतर सिनेमा भी कहा जाता है। उन्होंने सत्यजीत राय, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे भारतीय सिनेमा के महान फिल्म निर्देशकों के निर्देशन में भी काम किया। उनकी कुछ फिल्में हैं गर्म हवा, चश्मे बद्दूर, शतरंज के खिलाड़ी, उमराव जान, नूरी, किसी ने कहा, साथ साथ लाहौर, ये जवानी है दीवानी आदि।
वो क्या है कि मेरे पास 100 रुपए का चेंज ही नहीं है।
हाँ।
क्या करूं?
अच्छा देखता हूँ।
अरे चारण है मास्टर जी, कुछ मेरी इज्जत का भी तो ख्याल कीजिए, कुछ नोट वोट तो कम अज कम।
नोट
है ना, 1 रुपया। हाँ, अब वही ना बात।
थैंक यू अंकल।
कोई बात नहीं। हाँ मास्टर जी, भैया 1 रुपया आप याद से मुझसे ले लीजिए।
अरे 1 रुपए की क्या बात है,
कोई बात नहीं। अच्छा तो फिर जाने जी, कोई बात नहीं।
दिल है तो, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिसो बेजान सा क्यों है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया।
And friends, drummer, singer for rock band Foo Fighters, Taylor Hawkins left us this day 3 years ago in 2022. He was only 50 at that time. Prior to joining the band in 1997, Foo Fighters, he was the touring drummer for Alanis Morissette on her Jagged Little Pill tour, as well as a drummer in a short-lived experimental band called Sylvia. You're listening to Cold Day in the Sun by Foo Fighters, playing for Hawkins.
आज जन्म दिवस है भारतीय फिल्मों के निर्देशक और निर्माता शिबू मित्रो का। शिबू मित्रो का जन्म 25 मार्च 1948 को कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। FTII पुणे से स्नातक करने के बाद शिबू मित्रा ने अनुभवी निर्देशक बासु चटर्जी के सहायक के रूप में काम किया। उनकी मुख्य फिल्में हैं शंकर दादा, आखिरी गोली, 5 कैदी, इल्जाम, आग ही आग, पाप की दुनिया आदि। Legendary film director from Britain, that's David Lean, was born this day in Croydon, England. He has directed the legendary flicks Bridge on the River Kwai, Lawrence of Arabia. And today is also the birth anniversary of Hungarian composer, pianist Béla Bartók. He became interested in folk music, traveled a lot in Hungary and other countries, including Romania. Of course, listening to folk songs, which the country people sang. He often used the style of these songs in his music. And of course, he's famous for piano music, string quartets and several pieces of ऑर्केस्ट्रा। आज जन्म दिवस है ग्वालियर घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित मुकुल शिवपुत्र का। उन्हें पहले मुकुल कोम कली मठ के नाम से भी जाना जाता था। वे पंडित कुमार गंधर्व के पुत्र और सबसे बड़े शिष्य हैं।
ये कसुगना दे जाए,
अब हमें जीवन में सदा ही प्रेरणा की जरूरत होती है। आइए सुनते हैं प्रेरणादायक एक पंक्ति।
मन के जीते जीत है, मन के हारे हार।
और अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। नमस्कार
नमस्कार।